Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
ओम शांति। और विशेष रूप से उन धर्मों में जो मुख्य विषय हैं, जिनकी हम भी चर्चा करते हैं, उनमें क्या कहा गया है, ताकि अगर उसका थोड़ा ज्ञान हमें होगा तो जो जो धर्मावलंबी हमारे केंद्रों पर आते हैं उनकी बात को हम समझ भी सकेंगे, जो प्रश्न हमारे सामने वो उपस्थित करते हैं उसको समझते हुए हम उनको उत्तर दे सकेंगे। तो अगर उस बात को सामने रखा जाए तब ये विषय बहुत विस्तृत हो जाता है, क्योंकि अगर हम सभी धर्मों को न भी लें तो कल्पवृक्ष में जो धर्म दिखाए गए हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि वो काफी है। और हर एक धर्म के विषय में कम से कम 5 बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आवश्यक है। एक तो है उसका सिद्धांत पक्ष। सिद्धांत पक्ष से मतलब ये है कि वो आत्मा के विषय में, परमात्मा के बारे में, संसार या जगत के बारे में, काल क्रम के बारे में, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, और कर्म विधान के बारे में, उपासना के विषय में, या जो जीवन का लक्ष्य है उसके विषय में, ये जो सिद्धांत हैं, जिसको कोई फिलॉसफी भी कह सकता है, हालांकि फिलॉसफी अलग है, उसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन धर्मों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो जितने भी संसार में धर्म स्थापन हुए हैं उनमें इन विषयों की चर्चा की गई है। किसी ने या तो परमात्मा को माना है या उसके बारे में मानने से इनकार किया है, और अगर माना है तो उसका स्वरूप बताया है, और अगर नहीं माना है तो उसके कारण दिए। जैसे बुद्ध धर्म में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि स्वीकार करने न करने का प्रश्न नहीं है, उसकी चर्चा नहीं की गई। जो कुछ भी हो तो वो इस बारे में मौन है, लेकिन इस्लाम ने उनका जो आप सुनते हैं रोज नमाज पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले होता ही है अल्लाह अकबर, कि परमात्मा सबसे बड़ा है, गॉड इज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। उनका सबसे बड़ा नारा यह है कि परमात्मा, इस्लाम शब्द या मुसलमान शब्द का मतलब यह है कि सरेंडर यूर सेल्फ टू गॉड। मुसलमान या मुस्लिम या इस्लाम, ये जो शब्द हैं इसका मतलब है सरेंडर, परमात्मा के सामने हम अपना सजदा करें, मस्तक झुकाएं और उस परमात्मा की हम फरमान पर चलें, वो उनका सबसे बड़ा मंतव्य है। मौलिक उनका एक आधार जो है वो ये है, तो वो परमात्मा को मानकर चलते हैं। तो इसी तरीके से आत्मा के बारे में और भी जो बातें मैंने कही, तो एक तो सिद्धांत पक्ष है, इसी तरीके से दूसरा है नैतिक पक्ष, कि वो अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, मनुष्य को व्यवहार कैसा करना चाहिए, जीवन में रहना कैसा चाहिए, उसके मन वचन कर्म कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा हो, इन सब विषयों की जो चर्चा है, जिसको हम कर्म गति भी कह सकते हैं या कर्म विधान कह सकते हैं या आचार संहिता कह सकते हैं, कोई भी नाम दें हम, लेकिन जिसमें इस बात की विशेष चर्चा की जाती है। कई लोग तो कहते हैं कि ये धर्म का हृदय है, धर्म धर्म ही नहीं अगर वो इस विषय में चर्चा नहीं करता। धर्म का एक अभिप्राय मुख्य यही होता है कि मनुष्य को सदाचार सिखाए, दूसरों के साथ सदव्यवहार सिखाए, इसलिए ये धर्म का एक आवश्यक पक्ष है, मुख्य पक्ष है, इसकी चर्चा भी जरूरी है। तो एक मैंने आपको बताया सिद्धांत पक्ष, दूसरा नैतिक पक्ष, तीसरा है उपासना पक्ष। अच्छा, एक दिन में तो ये अच्छाई आ नहीं जाती जीवन में, तो हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार से जो परमात्मा को मानते हैं उन्हें परमात्मा से नाता जोड़ना चाहिए, जिसको कई योग कहते हैं, कई उपासना कहते हैं, कई संध्या प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर कहते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी एक रीत है उस परमात्मा से नाता जोड़ने की, अगर वो परमात्मा को मानते हैं तो। अगर वो परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को तो सभी धर्म मानते ही हैं, ये तो एक धर्म की चर्चा ही यहां से शुरू होती है कि जड़ और चेतन दो अलग है। कि अब जो हम देह अभिमानी हो गए हैं, वो बॉडी कॉन्शियसनेस या देह अभिमान को छोड़कर आत्मा के स्वरूप में स्थित कैसे हो, वो हमारी नेचुरल स्टेट कैसे हो जाए, या जैसे मैंने कहा कि नैतिकता, वो जीवन में हमारे सद्गुणों का विकास होकर हम संपूर्णता या अपनी नैतिकता की परिपक्वता को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए जो एक उनकी दिनचर्या या चर्या जिसको कहते हैं, दिनचर्या तो होती है जो दिन भर में की जाए, चर्या होती है जो सारे जीवन में करने की होती है, जो करते करते हमारे लक्ष्य का प्राप्त करना हो। जीवन के लिए एक प्रोग्राम बना लेना कि ऐसे ऐसे हमें करना है, ऐसे ऐसे हमें चलना है, हमारी दृष्टि ऐसी हो, वृत्ति ऐसी हो, स्थिति ऐसी हो, स्मृति ऐसी हो, सारा अपना एक नियम मर्यादा बना लेना जिसमें कि हम अपने को बांधें, जिसके अनुसार हम चलें। ये एक तीसरा पक्ष होता है जिसमें भक्ष अभक्ष भी आ जाता है, हमें खाना क्या है, नहीं खाना क्या है, ये भी हर एक धर्म में इस विषय में चर्चा की गई है। कई तो ये भी कहते हैं कि खाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज खा लो। तो भी कहने का भाव यह है कि इसमें चर्चा तो जरूर होती है कि कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये जो सारी चीज है, इसको हम उपासना पक्ष या जिसको कहना चाहिए साधना पक्ष, कई इसको कहते हैं, ये एक अलग एक विषय है जिसका वो अध्ययन करते हैं। साथ साथ जो हर एक धर्म में आप देखेंगे कि वो ये कोशिश करते हैं कि हम जो सेवा है दूसरों की करें। कई लोग ऐसे धर्म हैं, ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें तबलीग या प्रोजेलाइटाइजेशन, धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व दिया गया है। कुछ लोग उसको शुद्धिकरण कहते हैं। कई लोगों को मैं आपने देखा होगा एक धर्म से दूसरे धर्म में बदली करने की कोशिश करते हैं, और धर्मों वाले एक धर्म से दूसरे धर्म में ले आने की कोशिश करते हैं। तो हर एक धर्म में ये कहा गया है कि ये भी एक अच्छा कार्य है जिसको हमारे यहाँ सेवा का सब्जेक्ट कहा गया है, कि दूसरों को भी अच्छाई बताना और उनको भी रास्ते पर लगाना। क्योंकि केवल अगर हम अच्छे बनेंगे और दूसरे अच्छे नहीं होंगे तो संसार में सुख और शांति पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो ये भी एक सेवा है जिसको हमारे यहाँ सेवा कहा गया है। तो वो एक पक्ष हर एक में ये कहा गया है। अब लोगों ने उसको एक रस्म सी बना ली है, एक संस्कार विधि सी बना ली है कि किसी का धर्म बदली किया जाए तो कैसे किया जाए। ईसाइयों में अपने तरीके से है, मुसलमानों में अपने तरीके से है, हर एक ने अपनी पद्धति बनाई हुई है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ वो परिपाटी नहीं है। हम शुद्धिकरण करते हैं, नाम उसका उन्होंने भी शुद्धिकरण रखा हुआ है, हम संस्कारों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने जन्मी पहन लिया, चोटी रख ली, तिलक लगा लिया तो वो उसकी शुद्धिकरण हो गया, चलो उसका नाम बदली हो गया, उसका नाम कोई और था और धर्म में उसको हमने पलट दिया तो वो उसका शुद्धिकरण हो गया। हम ये कहते हैं अपने अपने धर्म में बेशक रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नाम कोई मुसलमानों जैसा है, ईसाइयों जैसा है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि संस्कारों को बदलो, अपने कर्मों को बदलो, अपनी दृष्टिवृत्ति को बदलो। हम इसको जो वास्तविक शुद्धिकरण है, जिसका जो स्वधर्म को धारण करो, धर्म की बात नहीं बदलने की, धर्म तो जो स्वधर्म है आत्मा का, उसमें आत्मा को स्थित होना चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसकी चर्चा की गई है हर एक धर्म में। कोई भी धर्म का शास्त्र आप पढ़ेंगे तो किसी ने जोर के तरीके से कोशिश की। इतिहास आप पढ़ते हैं कि औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ, और उन्होंने ये बनाया कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई बांग दे, जहां तक उसकी आवाज जाए वो सब मुसलमान हो जाए, और दूसरों को काफिर कहकर तलवार के जोर से भी उनका मजहब बदलने की कोशिश की। कईयों ने उनको एक प्रलोभन देकर कि तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो जिनको यहाँ पर शूद्र वर्ण का कहा गया था, तुम्हें ऊंची जाति का माना जाएगा, हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, किसी और तरीके से बदलने की कोशिश की गई। लेकिन हम आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखते हुए, सभी को उस परमात्मा की संतति मानते हुए, हम उस ऊंच नीच को या जात पात की दीवारों को ना मानते हुए, हमारा भाव यह है कि सब उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ के उससे पवित्रता सुख शांति का संपूर्ण वर्षा ले। हमारा जो शुद्धिकरण या किसी को जो ये सेवा करना जिसको हम कहते हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और। बहरहाल कहने का भाव यह है कि ये भी एक पक्ष रहा। तो एक सिद्धांत पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो गया, उपासना पक्ष हो गया, और फिर एक पक्ष ये है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हर एक धर्म जब स्थापन होता है तो उस धर्म के जो धर्म पिता हैं वो जैसा जीवन जीते हैं, जैसी उनकी अपनी दिनचर्या रही, लोगों से बातचीत करने का, व्यवहार करने का तरीका हुआ। हमारे यहाँ ही आप देख लीजिए, सभी बातें मुरली में नहीं होती, बाबा फिर पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। व्यक्तिगत कोई मिलता है, अपनी समस्या सामने रखता है, घर की परिस्थिति बताता है, व्यवहार की परिस्थिति बताता है, उस पर उसको कहा जाता है, कुछ समझाया जाता है। या मातेश्वरी जी का, पिताश्री जी का जो जीवन, जो व्यवहार हमारे सामने रहा, जिसको हम कहते हैं कि बाबा को हमेशा सामने रखो, किस परिस्थिति में बाबा ने क्या किया। तो हर एक धर्म वाले उनके धर्म पिता ने, या उस धर्म पिता के बाद जो उनके विशेष आगे बाद में और महाजन, विशेष पुरुष, जो महान पुरुष हुए, उनकी जो जीवन वृत्तांत है, जीवन कहानी है, जीवन गाथा है, उसमें जैसा जैसा उन्होंने किया, जैसे कहते हैं महाजना ये न गता सपंथ, कि मनुष्य को कैसा मार्ग अपनाना चाहिए, जैसे बड़ों ने किया वैसे करना चाहिए। ये एक सहज सी बात है, ज्यादा क्यों झंझट में पड़ते हो, इतना सरल रास्ता ही अगर अपना लो एक आम आदमी। एक कहानी तो बड़ी रोचक होती है, जीवन कहानी बड़ों की समझ के अगर वैसा ही तुम व्यवहार करते चलो तो भी पार लग जाओगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो बहरहाल हर एक धर्म में ऐसा है कि जो उनके बड़े हुए, उन्होंने अपना जीवन जिस ढंग से जिया, लोग फिर उनके तरीके को अपने व्यवहार में मान लेते हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद साहब ने 4 शादियां की, जो मुसलमान धर्म के स्थापन थे मोहम्मद साहब, उनकी 4 बेग में थी, 4 औरतें थी, 4 वाइफ थी। तो अब आम मुसलमान क्या करे, तो वो उनके सामने एक आदर्श हो गया कि ये हो सकती है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हर एक पत्नी को बराबर का जो प्यार दे सके वो एक से अधिक पत्नी रख सकता है, लेकिन भाव यह है कि उनके नियम में कोई एकदार नियम, जिसको हम कहते हैं कि भाई पॉलीगैमी तो हो ही गया, मोनोगैमी तो नहीं हुआ, एक एक पत्नी का नियम तो नहीं रहा, दूसरा नियम हुआ। तो उनके जो प्रमुख हुए, जिन्होंने जैसा जीवन जिया, अब क्राइस्ट हैं तो वो अविवाहित थे, वो बैचलर थे। अब उनके यहाँ जो प्रीस्ट हैं, उनके जो बनने की प्रथा है प्रीस्ट की, वो वर्जिन रहते हैं और बैचलर रहते हैं, अविवाहित रहते हैं। उनके यहाँ ब्रह्मचर्य का नियम है। अब बहुत समय से ये उनके यहाँ भी सवाल उठने लगा, पोप से कई दफा कहा गया कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब इजाजत दी जाए कि जो बिशप्स हैं या फादर्स हैं, जो चर्च का बड़ा होता है उसको फादर कहते हैं, उनको भी शादी की इजाजत दी जाए। अब जैसे जैसे जमाने में गिरावट आती गई, आप देखते हैं कि लोग कोशिश करते हैं कि जो नियम है उनको ढीला किया जाए, ऐसी कोशिश की जाती रही, लेकिन अभी तक उठा नहीं हुआ। तो अभी तक उनके यहाँ यही एक नियम है कि इसका पालन करना है। तो कहने का भाव यह था कि जो उस धर्म में बड़े होते हैं, जिन्होंने जैसा जीवन जिया होता है, वो उनके अनुचरों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए आदर्श हो जाता है, वो वैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उसका अध्ययन करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो समाज का एक नियम बनता है, जैसे मान लो जिसको हिंदू लॉ कहते हैं, या मुस्लिम लॉ कहते हैं, या क्रिश्चियन लॉ कहते हैं, या ज्यूइश लॉ कहते हैं, हर एक धर्म संप्रदाय का जो अपना नियम बन जाता है, जो सरकार भी नियम पास करती है, तो वो उनको आधार मानती है जो उनके यहाँ उनके धर्म में कहा गया है। क्योंकि धर्म एक ऐसी संवेदनाशील चीज है, एक ऐसी सेंसिटिव बात है, कि अगर उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट भी कोई कदम लेती है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों करते हैं, हमारे बड़ों ने जो कहा है वो तो परमात्मा से मिले हुए थे, आप राजनीति में बड़े हो सकते हैं, धर्म में बड़े नहीं, इसलिए आप हमारे जो धर्म के नियम है उनमें आप कुछ रुकावट नहीं डाल सकते। तो ये एक पक्ष और होता है जिसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। ये एक थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन उसके बाद वो जो बड़े लोग रहते हैं, जिस तरह से एक रीति रिवाज सा बन जाता है, समझो कि उनके यहाँ एक प्रथा सी बन जाती है, जिसको कई लोग मर्यादा भी कहते हैं, कई परंपरा कहते हैं, तो ये एक चीज होती है जिसको पालन करना वो अपने यहाँ एक धर्म के तुल्य मान लेते हैं। इतने उसके बारे में भी सेंसिटिव हो जाते हैं कि चाहे उसका अपने कोई आध्यात्मिक विकास से बहुत बड़ा संबंध ना भी हो, तो भी वो उसको इतना महत्व देने लगते हैं कि धर्म जैसा स्थान उसको देते हैं।